Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar Shukla.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे. और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन जी चौधरी.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज फॉल इन सिंक विद ग्लोबल इक्विटीज अमिड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ जिटर्स. सेंसेक्स सिंक्स 931 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस बिलो 23,000. Union Cabinet approves four projects of the Ministry of Railways with a total cost of 18,658 crore rupees. And global crude oil prices slump over 7%. Brent crude trades at $65.02 per barrel.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से उभरी चिंताओं के कारण वैश्विक बाजारों के साथ घरेलू शेयर बाजार में भी गिरावट आई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक 931 अंक लुढ़का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,000 से नीचे पहुंचा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 18,658 करोड़ रुपए की लागत वाली चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी. और वैश्विक क्रूड ऑयल की कीमतों में 7% से अधिक की गिरावट. ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $65.02 प्रति बैरल.
Benchmark a domestic
घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की गिरावट देखी गई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से उभरी चिंताओं के कारण वैश्विक बाजारों में आई सुस्ती को दर्शाता है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक 931 अंक यानी कि 1.22% नीचे लुढ़क कर 75,365 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 346 अंक यानी कि 1.5% से अधिक नीचे आकर 22,904 पर पहुंच गया. बीएससी के विस्तृत बाजार सूचकांक पर भी आज वैश्विक अनिश्चितताओं का असर देखा गया. मिड कैप सूचकांक 3% से अधिक लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.4% से अधिक की गिरावट आई. सेंसेक्स की 30 में से 24 कंपनियां आज लाल निशान के साथ बंद हुई. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 26 कंपनियों ने 52 सप्ताह के अपने उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 86 कंपनियां निचले स्तर पर रहीं.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस स्टंप्ड मोर देन 1% टुडे मिररिंग लॉसेस इन ग्लोबल मार्केट्स फ्यूल्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स tariff jitters. The 30-share index of the BSE Sensex shed 931 points of 1.22% to close at 75,365. The NSE Nifty 50 plummeted at 346 points, almost 1.5% to settle at 22,904. The broader market indices at the BSE also bore the brunt of global uncertainties. The mid-cap index dipped over 3% and the small-cap index dropped over 3.4%. In the Sensex pack, 24 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, Tata Steel nosedived almost 8.6%. Tata Motors dipped over 6.1% and Larsen and Toubro lost more than 4.6%. Conversely, among the top gainers, Bajaj Finance rose over 1.4%, HDFC Bank added 1.3% and Nestle India gained almost 0.8%. In sectoral indices of the BSE, all 21 sectors witnessed selling pressure. In the top laggards, metal tanked over 6.3%, capital goods declined almost 4%, and industrials as well as oil and gas both fell 3.89% each. The overall market breadth of the BSE was negative as shares of 2,820 companies declined, 1,126 companies advanced, and 130 companies remain unchanged. At the NSE, 26 companies hit their 52-week high, while 66 companies hit their 52-week low.
और अब रुपए की बात करते हैं तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 85.23 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 104.04 पर कारोबार कर रहा था। अर्जुन, आज मार्केट का जो हाल हमने देखा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रेट के ऐलान के बाद दूसरे दिन बिकवाली की आधी एक तरह से चली, और ये भी कह सकते हैं कि इक्विटी बेंचमार्क में इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई से फिर ना जाने कितने नीचे आ चुके। एक तरह से अगर आंकड़ों की हम देखें तो 13% नीचे आ चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन जी, उनसे बात करते हैं। पुनीत जी,
हाँ जी,
स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
थैंक यू।
तो जैसा मार्केट का आज हाल रहा, जिस तरह से मार्केट की रफ्तार हमने देखी सुबह से लेके मार्केट शुरू होने से लेके बंद होने तक, लोगों की मतलब धड़कने की तरह से बढ़ती ही नहीं कि कहाँ तक की गिरावट होगी, क्या कहेंगे?
देखिए, मार्केट में जो इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं और जिस प्रकार से मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट्स चल रही हैं और जो ट्रेड वॉर का एक माहौल बना हुआ है मार्केट को लेके, तो मुझे लगता है ये जो अनसर्टिनिटी है इसके सामने मार्केट्स का गिरना जो वो तो एक बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। और मुझे लगता है ये अभी ये ट्रेंड बना रहेगा क्योंकि अनसर्टिनिटी अभी जा नहीं रही है और ट्रेड वॉर के जो माहौल है ये और थोड़ा आगे इसमें और मुझे लगता है बढ़त ही आएगी। तो आई थिंक दिस मार्केट इज गोइंग टू लुक वीकर गोइंग फॉरवर्ड।
पुनीत, द बिग न्यूज टुडे इज नॉट सो मच द टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय President Donald Trump by the reciprocal tariffs imposed by China on the US, which is 37% on US goods. That's been the trigger for the sell-off. In fact, the US market, which is still live right now, has fallen significantly. What do you think the small investors should do right now? Because if you look at the buy-sell data, we saw that the DIIs were the net buyers to the tune only of 220 crore rupees. But the FII is once again net sellers, so you don't have the DIIs really supporting the sell pressure imposed by the FIIs. How do you expect the small investor to react right now in these market conditions?
So it's a very difficult time for investors actually, because they don't actually they're not able to make up their mind whether to stay in the market in terms of keeping investing at lower levels or should they stay away from the market. My own sense is that right now the uncertainty is so high that it will be better if they stay away from the markets, do not commit any large funds, and whatever, if they have a SIP or something which is a systematic investment plan, I think they can continue that. But they should not make any fresh bets as far as markets are concerned, because I think this is going to play out even longer. This is definitely this geopolitical instability, the trade wars, the economic concerns. I think these things are not going away in a hurry. It will take several weeks or maybe months to play out. So for small investors, I think the better course would be to stay away, wait for markets to correct further, and then probably that will be the time when they can find very good attractive valuation to look at fresh buying.
पुनीत, अगर हम विदेशी निवेशकों की बात करें तो बिकवाली हम लगातार देख रहे हैं, FIIs लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या ये जो आजकल के हालात हैं ये बिकवाली बाजार में दबाव बढ़ाने का और भी काम करेंगे, या फिर एक खासकर निवेशक की नजर से देखें तो बाजारों का रुख कैसा लगता है आपको?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट में जो बिकवाली चल रही है, और जो देखिए हम ये ना भूलें कि पिछले चार वर्षों में काफी बड़े पैमाने पर स्टॉक्स में तेजी आई थी, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अभी भी अच्छा मुनाफा है, जो लोग जो पीछे से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे कई वर्षों से, उनका अभी भी पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, और तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो हम फ्रेश सेलिंग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है अभी मार्केट्स में वीकनेस का माहौल बना रहेगा, पर्टिकुलरली क्योंकि इकोनॉमिक जो ट्रेंड है वो भी वीक है, और सिर्फ भारत की बात नहीं करता बल्कि भारत तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहा है मार्केट, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेंड है वो बहुत वीक है, और उनके चलते मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कंजर्वेटिव रहना चाहिए। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ बट से कि फ्रेश कैपिटल पे बहुत ज्यादा कमिट ना करें, यहाँ पर रिस्क ना लें, कम रिस्क पर काम करें। दिस इज द टाइम टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन द मार्केट।
Puneet, just looking at the US dollar index, it's 102 right now. Will it plummet further? And we're seeing a rise in precious metals, gold and silver. In the commodities market, the precious metals market, gold is almost $3,200 US per troy ounce right now. So how do you expect the equity market to behave, especially with the FII selling? It's a dollar denominated market all the way, both equity and in the real economy as well. So how do you see the market right now in terms of value investing? You mentioned about value investing for small investors. How do you see value investing in terms of foreign exchange, in terms of even precious metals?
So, Arjun, if you see what happened in the markets yesterday, was that almost every asset went down. So it was a strange day because not only the stock market fell in USA, we saw a very sharp fall in gold. We saw a very sharp fall in even crypto assets. So gold, silver, almost every asset, it kind of fell because there was the investors were pulling liquidity from the market. So I think given that there will be opportunities for value investors, they will find assets at much lower levels, whatever they like. If they like equities or they like precious metals or any other asset, I think it will be very attractive. But again, I would say be patient. This is not the time to hurry and to buy into risk assets right now. This is a time to conserve capital and probably wait for better valuation.
पुनीत, अगर थोड़ा सा ब्रॉडवे में जाकर आपसे मैं पूछूं, तो जैसे कि बीते एक साल के दायरे को अगर हम लेते हैं, तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए, काफी पैसा और कंपनियों ने मार्केट से उठाया है. लेकिन आज जो हालात हम देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ अपने आधे से भी कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा. जो आईपीओ मार्केट में हमने देखा पिछले कई वर्षों, कई महीनों से, कि काफी ऊंची वैल्यूएशंस पर इन्वेस्टर्स काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह कि स्पेकुलेटिव मार्केट हो गया था आईपीओ. तो मुझे लगता है कि वो नेचुरल था कि वहां पर थोड़ा गिरावट आ सकती है. अगेन इस वक्त, हेलो,
जी जी सुन रहा हूँ.
Well, Puneet was just talking about the triggers in the market. Nikhil, we also mentioned about China reciprocal tariffs of 34% on US goods. You know, that's going to take effect from April the 10th. And I'm sure that will be another trigger as well. Today, of course, has been a trigger. It's the 4th of April. The China tariffs will be with effect from the 10th of April. So a lot of pain in the market right now, Nikhil.
मैं ये कहना जरूर चाहूंगा यहाँ पर कि अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर 26% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया, अगर हम अन्य देशों को देखते हैं तो चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% का टैरिफ लगाया है. तो वहां पर भारतीय वाणिज्य मंत्रालय जो है, उसका ये कहना है कि हम इसके प्रभाव का आकलन करेंगे और जो टैरिफ का क्षेत्रों में असर होगा भारत की इकोनॉमी से झेल सकती है, इससे मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. और पुनीत, इस बारे में हमें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जितना भी टैरिफ लगाया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था उसे किस तरह से टैकल करेगी, उसका सामना कैसे करेगी? क्यों पुनीत?
तो फ्रॉम द इक्विटी मार्केट वी नाउ मूविंग ऑन टू द रियल इकोनॉमी. पुनीत, बट वी हैव बीन क्वाइट रिजिलिएंट ऑल थ्रू आउट. 27% इज व्हाट इज बीइंग इंपोज्ड ऑन इंडिया, दैट्स कंपेयर्ड टू चाइना. It's less, but in terms of the real economy, what is going to be the impact on our GDP numbers, on employment as well, because MNCs employ a lot of workers in India.
तो देखिए, निखिल ने भी जो बात कही और अर्जुन आपने कहा कि जो हम सिर्फ ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ये रियल इकोनॉमी और जो रियल जीडीपी, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं लोगों की, ये उसको असर पड़ने वाला है. और मेरा अनुमान है कि पूरी दुनिया में जो इसका एक ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा. So
that's right, because you know, if you look at the metal index right now, it was the worst hit today of all the indices. If you look at Tata Steel, it went down by 8.6%. The metal index went down. Nifty IT, they have exposure to the overseas market as well, that went down by 4%. Banking has exposure in the domestic market, but you need banks to finance these companies, to trade finance these companies for the expansion, for their merger. mergers and acquisitions. Now that also went down. The Nifty Bank didn't fall as drastically as the other sectors, but clearly there seems to be a deep penetration in terms of valuation loss. So, I mean, you have asked small investors to wait and watch, but when you talk about the real economy, how do you see the government balancing it? Because one gets a sense that they want a bilateral trade agreement so that they don't get the full impact of the protectionist policies of the US against all countries.
So Arjun, let's look at the global economic situation. We have, on one hand, we have USA, which is the largest economy, which is $30 trillion economy. China is almost $18-20 trillion, about $18 trillion, but let's say $20 trillion. And America and China together form about 50% of the world economy. Now, if these two countries go to trade war, of course, all others are also in the mix. I mean, India is there, and then Japan and China and South Korea. So surprisingly, no country has been spared in this. It's not just a war between number one and number two, a trade war. It's a trade war across the globe. So my own sense is that whatever happens, whether the tariffs go down or go up or whatever, I think there is huge amount of uncertainty in the markets. People don't like it. Neither businesses will not invest in
such
environment.
There's also one more point, Puneet. Except China, debt to GDP of many of these countries are also quite high.
No. But yesterday, if you see, Fitch came out with a rating on China, and they cut the credit rating for China from A plus to A. So for the first time, there is a global rating agency saying that even in China, there's a problem vis-a-vis debt. So clearly, I think because post-pandemic, we saw the whole world borrowing and spending on investments and welfare schemes. So clearly, the world is already over-leveraged. On top of it, we have a situation where there's a trade war going on. So it's not good prognosis. Honestly, I think, again, I will go back to the same issue. The time to be cautious. Honestly, I don't know how it will play out. I do not know where the economies will go, what will happen to Europe. See, we haven't even discussed Europe, which is, again, a very large part of our next call,
what's happening in the European market and the Asian markets also.
So, this is a world reset.
पुनीत, एक तरफ जहां यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये जो हमने टैरिफ लगाए एक तरह से ये अमेरिका की आर्थिक आजादी का दिन है, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंताएं कहां तक इसमें नजर आती हैं, और खासतौर पे जब चौतरफा ट्रेड वॉर भी आगे बढ़ने की संभावना, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज जिन्होंने ये कहा है कि हम जो ये करेंगे उसका पूरा पूरा जवाब देंगे, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर इससे मार्केट प्रभावित होता है, बिजनेस ट्रेड प्रभावित होता है, तो भारत को फायदा हो सकता है.
देखिए निखिल, मैं इफ आई स्टिक माई नेक आउट तो मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि बाय ईयर एंड डेफिनेटली अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन जो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ट्रेंड चल रहा है वहां पर, वो एक बहुत ही नेगेटिव है. और यदि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आता है और नेगेटिव रिसेशन आता है, तो उस पर सबका असर पड़ेगा. ये कहना कि भारत को उसका फायदा होगा, ये मुझे नहीं लगता कि सही है. रिलेटिवली हमको शायद कम नुकसान हो, क्योंकि जो वियतनाम है या बांग्लादेश है, दूसरे देश जो एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका, वहां पर काफी टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो हो सकता है हमें नुकसान कम हो, लेकिन फायदा इसका हमें होगा ये कहना मुश्किल है.
लेकिन इसमें एशियाई उथल पुथल जो मची हुई है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जरूर डालेगी.
देखिए, इस वक्त तो विश्व के हर कोने में उथल पुथल मची है, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है और जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, ये काफी ज्यादा अनसर्टेन है, क्लैरिटी नहीं है अभी क्या होगा.
अब देखते कितना उथल पुथल है.
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख 5 शेयर बाजारों में गिरावट का रुख देखने को मिला. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम 3% नीचे आ गया, और जापान का निक्केई 2.8% से अधिक के नुकसान के साथ बंद हुआ. वहीं दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की सुस्ती देखी गई. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद थे. बात करें यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की, तो अंतिम समाचार मिलने तक तीनों प्रमुख सूचकांक आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी का डेक्स 5.8% गिरकर और फ्रांस के कैक में 4.8% से अधिक की सुस्ती देखी गई. वहीं लंदन के फुटसी 100 में 4.3% के नुकसान को आज देखा गया.
So European markets, we have DAX going down by almost 6%, CAC 40, France's almost 5%, London FTSE 100, 4.3%, it's the banking capital of the world along with Switzerland. So how do you see the European markets? We know the Asian markets ahead, including Japan's Nikkei, which shed 2.8%, but the European markets have really taken a hit.
And not just that, Arjun, the issue is that the scale of loss, 6%, 7% decline, declines in indices, large indices. These are mainline indices. And look at the amount of wealth which has been destroyed across the world. The investors are losing money. This is not going to, be easy. This is going to really destabilize spending. It is not just about markets. This is going to hurt economic activity. People are going to spend less. They're going to buy less. There's going to be entire slowdown in the economic.
Inflation should be a major concern, should it not?
So I think on paper inflation could be there, but if we go into a recession, so there could be prices could come down because China could dump its produce elsewhere. But I think most likely scenario appears to be stagflation, where we have a stagnant growth and we have a slight inflation.
What about the selling of US Treasury yields? That also fell by it's now less than 4%. You have China and Japan holding a lot of their paper. How do you see the debt market playing out for the US?
So for the time being, what has happened in last few days is that people have tried to flee to the safety of US debt markets, and therefore we have seen the yields come down, and which means that the prices of bonds have gone up. So essentially, I think people have diverted, or investors have diverted, a large amount of money from any type of other assets like gold, stocks, cryptos. The money has gone into the safety of US bonds rather than any other asset.
Let's have a look at what the US markets are doing now. US stocks stumbled on Thursday, registering the biggest daily percentage drop since COVID pandemic in 2020, as US President Donald Trump's sweeping trade tariffs sparked fears of a global recession. The Nasdaq Composite Index led declines on Wall Street, plunging almost 6%, its largest daily loss since March 2020. The S&P 500 shed over 4.8%, with more than 400 of its 500 constituents posting losses, and the Dow Jones Industrial Average fell almost 4%. Both indices posted the biggest daily percentage declines since June 2020. On Wall Street, the biggest drags were from highly valued mega cap stocks. Apple slumped over 9%, hit by the tariffs on China, the base for which much of its manufacturing, while artificial intelligence chip leader Nvidia dripped nearly 8%. Shares of US banks dropped to multi-month lows on fears that tariffs would result in a recession and a slowdown in consumer spending that could hurt earnings. Right now, we have some economic data from the U.S., and particularly if you look at employment, 4.2% is right now the unemployment data. And they also have another figure called U6 unemployment data, which is, I believe, at 8% almost. What does U6 mean, and what does this data mean for the U.S. economy?
So basically, unemployment data that we're getting about 4%. Approximately, which is overall data. U6 you mentioned is where it is employable, but by choice, you have people who are not opting for work. So, but this is historic lows as far as unemployment is concerned. So government of USA is quite happy that they're in very good space. Market, the economy seems to be doing very well. Unemployment rate is low, but this is past data. This is what has happened in the last 1 year over the past couple of years, the trend in the economy. I think that policies which are being unveiled now will lead to higher unemployment, like we talked about, lower economic growth, higher inflation. All these things point to a slowdown in the economy. And therefore, I think this unemployment data, which used to excite the markets earlier, the market used to feel very, we used to look at unemployment data or manufacturing data with a lot of excitement to decipher what is going to happen in the future. I think all that has been upended. We are looking at whole new game plan where tariffs are going to decide. And unfortunately, all this will play out in the next 6 months. We will not know next week what tariffs are doing. We will not know next month what is happening as far as unemployment is concerned. In the next few months only, we will know the direction in which the US economy is headed.
Puneet, abhi aankdon ki hum baat kar rahe hain to 2025 ki pehli timahi mein ye bhi anuman lagaya hai ki 2.8% tak Ameriki GDP ke niche aane ke anuman hai, khas taur pe aise sthiti mein jab is tarah ke halaat hum dekh rahe hain. Jo aaj ki agar sthiti dekhte hain hum, to Apple ke shares bhi bahut buri tarah se niche gir gaye, jo ki ek bada market mana jata hai ki wahan par inka asar kam padta.
देखिए, एप्पल जैसी कंपनी जिसका करीब करीब $3 trillion की मार्केट कैप थी, करीब 9% वो एक दिन में गिरा
जी।
तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डैमेज कितना डीप है और कितनी बड़ी कंपनीज पर. हम देखिए, छोटी मोटी कंपनी से बात नहीं कर रहे, द सो कॉल्ड मैग्निफिसेंट सेवन, एनवीडिया की बात करते हैं. एनवीडिया का शेयर अगर पिछले 3 महीने देखूं तो करीब 33% वो गिर गया, और वो $3 trillion की इकोनॉमी की कंपनी है. तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर मैं कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट है इन्वेस्टर्स में, एंड दे आर टेकिंग द मनी आउट.
टेस्ला
करीब करीब 50%, $480 का पीक रेट था, वो नीचे $220 का बिका, और उसी से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पर रीथिंक का माहौल भी बना.
इन मोर न्यूज, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स सर्ज बाय $6.6 बिलियन, रीचिंग ओवर $665.4 बिलियन इन द वीक एंडिंग March 28. अकॉर्डिंग टू द वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट released by the RBI during the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, were up by over $6.15 billion to over $565 billion. Gold reserves increased by over $519 million, totaling over $77.79 billion. Conversely, special drawing rights declined by $65 million, reaching $18.17 billion, and the central bank's position in the IMF was down by $16 million, reaching over $4.41 billion. Your brief take on our foreign exchange reserves, once again, is it based on valuations, earnings?
So, we're looking at $665 billion reserves. So, that I think that is one of the major consolations we have. Because when the trade war is there and this entire trade business gets disrupted, whichever country has large foreign exchange reserves, they will have a lot of stability. The currency will be stable. And that is what we have seen in the rupee. Rupee has stabilized around 85, 86 levels. So, I think it's very... I would really take a lot of solace from the fact that we have such large foreign exchange reserves and we can ride out this storm.
Prime Minister Narendra Modi today announced several India-led initiatives towards the institution and capacity building in BIMSTEC, participating in the 6th BIMSTEC Bay Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation Summit in Bangkok. Mr. Modi highlighted that BIMSTEC centers of excellence will be set up in India on disaster management, sustainable maritime transport, traditional medicine, and research and training in agriculture. Calling for greater regional economic integration, the Prime Minister offered to establish BIMSTEC Chamber of Commerce and to organize BIMSTEC Business Summit every year in India. Highlighting BIMSTEC as a vital bridge between South Asia and Southeast Asia, the Prime Minister underlined that the group had become an impactful platform for regional cooperation, coordination and progress. He called for further strengthening the agenda and capacity of BIMSTEC. After successfully concluding his Thailand visit, Prime Minister Modi has since left for Sri Lanka for the second leg of his two-nation tour.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है. नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा. पुनीत, जिस पर आपका कमेंट.
देखिए, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कंटिन्यू कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज है. और आप समझते हैं कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है.
In more news from the crude oil market, oil prices plunged over 7% today following OPEC's output increase and U.S. tariff concerns. Brent crude was trading 7.3% down at $65.02 per barrel. WTI crude was also trading 7.9% down at $61.66 per barrel when reports last came in. Puneet, your take on the oil market. This is the other big story, actually. Global crude oil prices are falling like this in international trade. Are we talking about spot, futures? And what do the futures mean?
So, you know, what happened yesterday was, all this noise, OPEC Plus decided to increase the oil output rather than cutting out output to support prices. So, clearly, I think they're also putting pressure on the USA. And therefore, I think oil markets are really under pressure right now.
और सराफा बाजार में सोना आज बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 89,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 3.49% गिरकर 91,450 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.43% बढ़कर 90,201 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 3.61% गिरकर 90,995 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. पुनीत जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद निखिल.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices fall in sync with global equities amid US President Donald Trump's tariff jitters. Sensex sinks by 931 points. Nifty closes below 23,000. Union Cabinet approves four projects of the Ministry of Railways with a total cost of 18,658 crore rupees. And global crude oil prices slump over 7%. Brent crude trades at $65.02 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.